हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री भारत के व्यापार दौरे से लौटकर आए हैं। कोविड महामारी और विरोध के बावजूद उन्होंने ये दौरा किया, तो आइए नताशा भास्कर झा से समझते हैं कि ये दौरा किस लिहाज से महत्वपूर्ण था। नताशा जनरल मैनेजर है न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप में, जो कि लीडिंग एडवाइजरी फर्म है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश के मामलों को लेकर। नताशा, आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक्स विकास, थैंक्स वेरी मच।
नताशा, सबसे पहले सवाल यही बनता है कि कोविड के बीच में अगर टोनी अबॉट ने भारत का दौरा किया है, तो इस दौरे के क्या मायने हैं? आप इस यात्रा को कैसे देखती हैं?
बहुत ही अच्छा सवाल है और टोनी अबॉट के विजिट के काफ़ी अहम मायने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मायनों को समझने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि चाइना इज़ नो लॉन्गर ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट ट्रेडिंग फ्रेंड। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क जिसे कोविड ने एक्चुअली अब एक्सपोज किया है। और तीसरा, कोविड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसकी वजह से हर देश अपने इकोनॉमिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में है और अपने इकोनॉमी को रिजिलिएंट बनाने की दौड़ में है। हैविंग सेड दैट, टोनी अबॉट की जो अपॉइंटमेंट को अगर देखें, तो एज प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन्स स्पेशल ट्रेड एनवॉय फॉर इंडिया, एक क्लियर सिग्नल है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के आपसी रिश्तों के इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट को कैसे बढ़ाया जाए और उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, या फिर व्यापार और निवेश को बढ़ाने की हमारी जो कोशिश है वो सिर्फ आप एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। आपको समझना होगा कि इसमें एक पॉलिटिकल पुश की भी ज़रूरत है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टोनी अबॉट इज क्रेडिटेड विद पुशिंग फेथ एंड ट्रस्ट बैक इन द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलेटरल टाइज ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। थर्डली, प्राइम मिनिस्टर अबॉट का FTA रिकॉर्ड, जो मुझे लगता है कि फिलहाल दोनों देशों की प्रायोरिटी है, लेकिन इस डील को रियलिटी बनाने के लिए जिस तरह की मैनूवरिंग की जरूरत होगी, वो शायद प्राइम मिनिस्टर अबॉट से बेहतर कोई नहीं जानता, जिन्होंने अपने टेन्योर में एशिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ FTA साइन किया। सो ओवरऑल मुझे लगता है इट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। हाउ बोथ साइड्स विल एक्शन ऑन इट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन।
नताशा, ये तो बात समझ में आती है कि टोनी अबॉट एक सूत्र हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत को जोड़ने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बातचीत रही होगी, क्या संवाद रहा होगा?
देखिए, ये आपका सवाल मुश्किल है क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू द ऑफिशियल डेलिबरेशंस, लेकिन आज टोनी अबॉट ने ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने एक बात कही है कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस को एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है और इंडिया अपॉर्चुनिटी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को ज़्यादा रूबरू करना होगा, खासकर तब जब इंडिया ने पिछले एक साल में काफ़ी सेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। रिफॉर्म्स हैव बीन अटेम्प्टेड इन द माइनिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर, MSME, बैंकिंग। In fact, India has launched a production-linked incentive scheme in 13 sectors. And most recently, it has abolished the retrospective taxation, which brings about greater predictability and stability in the investment environment. और ये एक बहुत बड़ा concern रहा है corporate Australia के लिए, retrospective taxation, तो उसको भी abolish किया है। आज Tony Abbott ने अपने article में ये भी कहा कि, you know, he's argued that greater trade diversification away from China, which is a very, very core challenge and a strong priority for Australia currently, and the pandemic has exposed the extent to which the world has become dependent on Chinese imports. Because you have mentioned, the nature of his meetings, I must say that, you know, his official social media accounts and the Australian High Commission accounts have shown his meetings with Prime Minister Narendra Modi, the officials at the Niti Aayog, Mines Ministry, Commerce Ministry, Renewable Ministry, Finance Ministry, his meeting with the industrialist Gautam Adani, his meeting with Gujarat Chief Minister. So even if I try and analyze the choice of these ministries, agar main meetings ko analyze karun ki kis tarah ke ministries ko choose kiya gaya is visit ke dauran, to wo bhi dikhata hai ki उन एरिया से फोकस है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कंपेरेटिव एडवांटेजेस हैं और इंडिया की जरूरतें हैं।
आपने वैसे मेरे अगले सवाल का जवाब भी आधा दे ही दिया। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बात तो समझ में आती है कि ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा क्या है भारत के साथ, क्या भारत भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखता है?
देखिए, क्योंकि आपने शब्द का चयन बहुत सही किया है, अपेक्षाएं, मुझे लगता है अपेक्षाएं और इन अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए उस पर एक जबरदस्त रोड मैप हमारे पास ऑलरेडी है, तैयार है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट 2035 जो 2018 में रिलीज हुई थी, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ्स को इंडिया की जरूरतों से जोड़ता है। और लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की गई ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो पहली बार कभी किसी भारत इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री ने किसी डेडिकेटेड किसी कंट्री के लिए रिलीज की है, ये पहली बार हुआ है, जिसके ऑथर एम्बेसडर अनिल वाधवा हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स में बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी बताई गई है कि कैसे दोनों कंट्रीज को आगे एंगेज करना है। तो अगर बहुत ही सामान्य भाषा में कहा जाए तो रिश्तों में कौन से सेक्टर्स पर फोकस करना है, कहाँ हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर काफी काम हो चुका है। दरअसल अभी मुझे लगता है कि जरूरत है टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन की, पॉलिटिकल विल की और इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट की, और ये अभी भी मिसिंग लिंक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ विकास, द नंबर ऑफ फॉरेन फर्म्स करंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया इज ओनली ग्रोइंग। यू नो देयर आर 2000 ओवर 2000 यूएस कंपनीज, ओवर 1600 जर्मन कंपनीज, ओवर 600 इंडो जर्मन जॉइंट वेंचर्स, ओवर 1300 जापानीज फर्म्स, ओवर 600 यूके फर्म्स। तो बिजनेस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट तो सबके लिए एक जैसा है, फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज की हेजिटेंसी को जस्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है।
जी
दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट की तरह ही देखेगी तो अपॉर्चुनिटीज काफी सीमित रहेंगे और सिर्फ एक बायर सप्लायर डायनामिक ही रह जाएगा। इनहेंस द बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज नॉट जस्ट थ्रू आर एक्सपोर्ट एंडेवर बट ऑल्सो बाय FDI into इंडिया। सो यू नो इन 2018 इफ आई गिव यू अ स्टेटिस्टिक्स, ओनली अबाउट 0.6% ऑफ ऑस्ट्रेलियन आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट वॉज एलोकेटेड टू इंडिया, which is less than that allocated to countries such as Luxembourg, the Netherlands, Bermuda, PNG. So expectations and aspirations for the relationship has to be matched with actions, which is still missing.
वो विल नहीं दिख रही है कि इसको आगे लेके जाया जाए। यहाँ तक कई बार बात हुई है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उतना नहीं दिखता है जितना कि शायद और मुल्कों के साथ दिखता है। नताशा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, हालांकि पब्लिक डोमेन में अभी ये बातें नहीं आई हैं कि किन किन व्यापारों पर बात हुई, लेकिन आप जो एनालाइज करती हैं बाहर से, जो उनके स्टेटमेंट आए हैं भारत सरकार की तरफ से आए हैं इस दौरे के दौरान, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या-क्या व्यापार समझौते आगे बढ़ सकते हैं? किन-किन समझौतों के आगे बढ़ने की संभावना आपको दिखती है इस दौरे के बाद?
बहुत अच्छा सवाल है विकास। देखिए, ओवरऑल FTA की बात जो भी चल रही है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑफिशियली कहा जाता है, उसमें मुझे लगता है कि काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सेक्टोरल इंटरेस्ट काफी डिवाइडेड हैं, एम्बिशंस अलग हैं। लेकिन एक अर्ली हार्वेस्ट डील विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सीका, जिन सेक्टर्स में हमारे कॉन्फ्लिक्ट कम और कंसेंसस ज्यादा हैं, वहां पर कुछ अग्रीमेंट्स करके एक शुरुआत जरूर होनी चाहिए। और इस बारे में आज टोनी एबट ने भी कहा है, आज एम्बेसडर वाधवा ने भी बात कही कि एक इंटरिम अग्रीमेंट अगर हम कर पाए तो वो संभव भी है और उसकी शुरुआत की जा सकती है। इनफैक्ट स्पेशल ऑनवॉय टोनी एबट ने लिखा है कि एंड ऑफ दिस ईयर तक हम एक अर्ली हार्वेस्ट डील जिसे कहते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा, जहाँ पे दोनों कंट्रीज के डोमेस्टिक इंटरेस्ट आर टोटली अलाइंड। और ऐसे कुछ सेक्टर्स जो मेरे जहन में हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। दूसरी बात कि टैरिफ रिडक्शंस ऑन गुड्स, बिकॉज इस अर्ली हार्वेस्ट डील में हमारा फोकस प्राइमरली रिडक्शंस ऑन गुड्स रहेगा। इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज विल टेक टाइम, बट उसमें भी देर कैन बी नो ब्लैंकेट रिडक्शंस, बिकॉज इंडिया will try to protect its domestic sector, specifically when it comes to agriculture and dairy. But there can be niche areas which could be selected in these tariff lines in the first phase. So fruits, dairy, agriculture, and processed food items, they are very important for Australia for tariff reductions. Similarly, for India, it's refined petroleum, medicaments, railway vehicles, gems and jewelry, auto components, textile items. And just to give you an example of these tariff rates, like Currently, there is a 150% tariff on Australian wine exports to India and a range of other tariffs on Australian wool exports. So these are things which will become comparatively much better going forward if we, if we really be in a position to negotiate an early harvest deal among each other. Having said that, because I would also say this sort of an early harvest deal as a part of the CECA framework, it's equally important also for India. Because, the extent to which India opens up to global trade, acknowledging in light of its withdrawal from RCEP, will also determine the degree to which it can, attract investments, drive exports, make its own domestic industries competitive in the world market, and incentivize other countries to manufacture in India. Because if the tariffs are not cut down, it actually disincentivizes the other businesses across the globe to come and manufacture in India, right? Because the raw materials and the cost of it will always be high. So I personally feel that an early harvest deal can be a good win for both the countries, and it's just that how do we action on the intent which both countries have been sharing for some time now.
काफ़ी कुछ आपने नताशा बताया और उम्मीद यही है कि हमारे सुनने वाले इस यात्रा को आपके जो भी आपने कहा उससे समझेंगे। आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Thanks very much, Vikas. Vikas, it's been a pleasure.